आहान अपनी मीटिंग के सिलसिले में एक होटल आया हुआ था। उसकी मीटिंग तो कैंसिल हो गई थी, लेकिन वापस जाते वक्त उसने अपने डैड मिस्टर विजय ओबेरॉय और उनकी गर्लफ्रेंड दामिनी की बातें सुन ली थीं। वो दोनों मिलकर उसकी माँ शिवानी का मर्डर प्लान कर रहे थे। उनकी बातें सुनने के बाद आहान का गुस्सा सातवें आसमान पर था। ऐसी सिचुएशन में उसका गुस्सा बेकाबू हो जाता है तो वो खुद को या आसपास के लोगों को नुकसान पहुँचाने लगता था। आहान को अपने गुस्से पर काबू पाना जरूरी था क्योंकि उसे अपनी मॉम शिवानी को बचाना था। आहान अपने गुस्से को शांत करने के लिए तनु के पास गया। तनु ने थेरेपी रूम पहले ही खाली करवा लिया था। आहान फास्ट ड्राइव करके जल्द से जल्द तनु के क्लिनिक पहुंचा। आहान को देखते ही तनु बोली, चलो जल्दी आओ, पता नहीं तुम्हारी लाइफ में ट्रेजेडीज क्यों होती रहती हैं। तुम्हारा गुस्सा है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ, क्योंकि मेरी इस हालात का जिम्मेदार एक ही इंसान है और वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। मेरे गुस्से का कुछ करो वरना मैं उस इंसान की जान ले लूंगा, आहान ने जवाब दिया। वो तेज सांसें ले रहा था क्योंकि उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। तनु ने आहान का पीपी चेक किया जो कि इस वक्त काफी हाई हो रखा था। उसने आहान को कुछ मेडिसिन्स दी और फिर एक इंजेक्शन लगाया। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आहान का गुस्सा बर्स्ट हो रहा था। तनु, जो उसे पिछले 15 मिनट से ऑब्जर्व कर रही थी और उसका बीपी डाउन करने के लिए की पूरी कोशिश कर रही थी, उसने आहान की तरफ देखकर कहा, तुम्हारा इस तरह गुस्सा करना सही नहीं है। इससे ना सिर्फ मेंटल हेल्थ पर बल्कि फिजिकल हेल्थ भी सफर कर रही है। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता तनु, तुम यकीन नहीं करोगी कि विजय ओबेरॉय किस हद तक गिर गया है। वो अपनी उस सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर मेरी मॉम का मर्डर प्लान कर रहा है। मुझे मॉम को बचाना है। प्लीज डू समथिंग तनु, मुझे दिमाग ठंडा करके सोचना है और मुझे ऐसे गुस्सा आता रहेगा तो मैं कुछ नहीं सोच पाऊंगा, आहान ने काफी प्लीडिंग वे में कहा। पहली बार ऐसा हुआ था जब आहान खुद से अपना गुस्सा कम करना चाहता था। हर बार उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसे इतना तेज गुस्सा आ रहा है या फिर अपने गुस्से में वो किसी को नुकसान पहुंचा रहा है। ये एक तरह का पॉजिटिव साइन था। तनु ने आहान का हाथ पकड़ा और कहा, अपनी आंखें बंद करो और उन चीजों के बारे में सोचो जो तुम्हें खुशी देती है, जिनके बारे में सोचकर तुम्हारा गुस्सा अपने आप शांत हो जाता है, जैसे कि तुम्हारा फेवरेट खाना, म्यूजिक या कोई ऐसी जगह जहां तुम्हें सुकून मिलता हो। तनु आहान को अलग अलग आइडियाज दे रही थी ताकि वो उनके बारे में सोचकर अपना गुस्सा शांत कर सके। साथ ही वो आहान का बीपी लेवल भी ऑब्जर्व कर रही थी। आहान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था। उसे आइडिया देते हुए तनु ने कहा, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि उस लड़की के बारे में सोचो जो तुम्हारा गुस्सा शांत करती है। चलो हम उसके बारे में बात करते हैं, क्या नाम है उसका। आहान का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तनु उससे अलग अलग तरह के सवाल पूछ रही थी। तनु की बातें सुनकर आहान के दिमाग में चाहत का चेहरा घूमने लगा। उसकी छोटी ग्रे कलर की आईज, तीखा छोटा नाक और बोलते समय उसका बार बार अपने नीचे वाले होंठ के कोने को अपने दांतों के नीचे दबाना, ये सब सोचते हुए आहान के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। उसकी आंखों के सामने वो सीन घूम रहा था जब चाहत पहली बार उसके करीब आई थी और उसने चाहत को किस किया था। चाहत के राइट साइड आंखों से थोड़ा नीचे एक तिल था जो कि उसके चेहरे पर बहुत क्यूट लगता था। आहान ने तनु की बात का जवाब देते हुए कहा, चाहत शर्मा नाम है उसका, मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत पता लगाया था, वो 21 ईयर्स की है। अच्छा, तो तुमने उसके बारे में काफी कुछ पता लगाया है, मुझे बताओ चाहत का बर्थडे कब आता है। तनु ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, उसे कुछ सोच नहीं रहा था तो उसने चाहत का बर्थडे ही पूछ लिया। 1 जनवरी, जब पूरी दुनिया नए साल का स्वागत कर रही होती है उसी दिन मेरी डॉल इस दुनिया में आई थी, आहान ने जवाब में कहा। चाहत के बारे में बात करते हुए तनु ने भी नोटिस किया कि आहान का गुस्सा कम हो रहा है, साथ ही उसका बीपी नॉर्मल हो रहा था। तनु ने एक चॉकलेट निकाली और आहान के मुंह में डालते हुए कहा, कैसा लग रहा है आहान। ठीक वैसा ही जैसे पहली बार अपनी डॉल को किस किया था तब लग रहा था, आहान ने चॉकलेट खाते हुए कहा। ठीक है, अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो, हम नॉर्मल तरीके से बात करेंगे और आगे का सेशन कंटिन्यू करेंगे। मैं तुमसे कुछ हार्श सवाल पूछने वाली हूँ, प्लीज गुस्सा मत करना और ठंडे दिमाग से सोचना, तनु ने कहा और फिर एक चुटकी बजाई। इसी के साथ आहान धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगा। आहान का गुस्सा अब काफी हद तक काबू में आ चुका था। फिर उसने विजय ओबेरॉय और दामिनी की जो भी बातें सुनी थी वो सब तनु को बताई। तनु, जो काफी शांत और हर मामले को सोच समझ कर हैंडल करने वाली लड़की थी, पूरी बात जानने के बाद उसे भी गुस्सा आया। तनु ने सख्त आवाज में कहा, कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है कि अपनी ही पत्नी का मर्डर प्लान करे। शिवानी आंटी सच में बहुत भोली हैं। आहान, तुम्हें सबसे पहले उन्हें सिक्योर करना होगा। बस वही मैं सोच रहा था, मुझे किसी बहाने से मॉम को अपने घर पर लाना होगा। आयुष भी आया हुआ है तो आई होप वो मेरी हेल्प कर सके, आहान ने जवाब दिया। फिर उसने घड़ी में टाइम देखा तो शाम के 5 बज रहे थे। पहले मिस्टर राघवानी ने, फिर विजय ओबेरॉय ने, तो फिर उसके बाद आहान के गुस्से ने उसका काफी टाइम बर्बाद कर दिया था। वहां से निकलने से पहले आहान ने तनु को हक करके थैंक यू कहा और फिर बोला, अगर तुम नहीं होती तो न जाने मेरा क्या होता। मैं मॉम को लेने जा रहा हूँ, तुमसे बाद में मिलूंगा। तनु को बाय बोलने के बाद आहान वहां से चला गया। वहीं विजय ओबेरॉय और दामिनी कब तक साथ में थे। वो दोनों उसी होटल रूम में थे और किसी के साथ कॉल पर जुड़े हुए थे। सामने से एक लड़के की आवाज आई और उसने कहा, मैडम आप श्योर तो है ना कि उस औरत को अभी टपकाना है? रात का टाइम सही रहता है, उस वक्त ज्यादा लोग मौजूद नहीं रहते। जितना कहा है उतना ही करो। रात के अंधेरे के बजाय दिन के उजाले में कोई गलत काम करो तो लोग आप पर शक नहीं करते हैं, दामिनी ने जवाब दिया। वो उसी का आदमी कॉल था जिसे उसने काम पर लगाया था। पहले तो मुझे ये बताओ कि वो उस पास से बाहर निकली या नहीं, या उसका पूरे दिन वहाँ पर रहने का इरादा है, विजय ओबेरॉय बोले। शिवानी उस वक्त स्पा गई हुई थी। विजय ओबेरॉय उसके हर एक मोमेंट की खबर रखते थे। ये स्पा थोड़ा आउटर एरिया में बना हुआ था, इस वजह से वहाँ एक्सीडेंट को अंजाम देना आसान था। कॉल रखने से पहले दामिनी ने तेज आवाज में कहा, बाकी सब तो ठीक है लेकिन वो औरत जिंदा नहीं बचनी चाहिए। अगर वो जिंदा बची तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उस आदमी ने दामिनी की बात पर हामी भरी और कॉल कट कर दिया। वो एक बड़ी सी पिकअप गाड़ी में शिवानी के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। उसने गाड़ी को सामान से लोड कर रखा था। उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा क्योंकि 15 मिनट बाद ही शिवानी स्पा से बाहर आ गई थी। जैसे ही शिवानी चलते हुए अपनी गाड़ी के पास आ रही थी, पीछे से अचानक एक पिकअप गाड़ी आई और उसने शिवानी को हवा में उछाल दिया। अगले ही पल वो जमीन पर पड़ी और उसके माथे से खून निकल रहा था। वो जगह आउटर एरिया में बनी होने की वजह से आसपास लोग भी काफी कम थे, ऐसे में मदद मिलना भी आसान नहीं था। चाहत की एब्सेंस में श्रद्धा का पूरा दिन निशा के साथ अच्छा बीता। निशा दिल से काम कर रही थी। उसने पूरे दिन मिस्टर रवि के रेस्टोरेंट में आने वाले हर लोगों की पसंद के हिसाब से खाना बनाया और दोपहर के टाइम में टिफिन सर्विस के लिए आए हुए ऑर्डर को कम्प्लीट किया। इस बीच एक बार भी उसकी तबीयत खराब नहीं हुई और ये देखकर श्रद्धा सबसे ज्यादा खुश थी।
शाम के 6 बजे के करीब निशा और श्रद्धा साथ में मिलकर चाहत के आने का वेट कर रही थी। चाहत का वेट करते हुए वो दोनों मटर छील रही थी और आपस में बातें कर रही थी। देखना अब चाहत मन लगाकर पढ़ाई करेगी और तुम्हारी तरह उसे भी डिग्री मिल जाएगी। अच्छा पढ़ने के बाद अच्छी नौकरी मिल जाएगी, फिर मेरी चाहत को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, निशा जी ने मटर छीलते हुए कहा। उनकी नज़र दरवाजे पर टिकी थी। तभी अचानक उन्हें एक तेज खांसी आई और उसी खांसी के साथ उल्टी में उन्होंने काफी सारा खून निकाल दिया था। श्रद्धा उनकी हालत देखकर हैरान हो रही थी। वो कुछ सोच पाती उससे पहले निशा बेहोश हो चुकी थी। नानी नानी प्लीज जल्दी से यहाँ आइए, देखे ना आंटी को क्या हो गया, प्लीज जल्दी से आइए, श्रद्धा चिल्लाकर बोली। निशा की ऐसी हालत देखकर वो घबरा गई थी। पार्वती जी जल्दी से दौड़कर निशा के पास आईं और वहां बिखरा खून देखकर वो काफी डर गई थी। क्या क्या हो गया मेरी बेटी को, चाहत भी घर पर नहीं है, निशा निशा आंखें खोल, बोलते हुए पार्वती जी निशा के पास आकर उसे उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन सब बेकार था। निशा के होश में ना आने पर श्रद्धा और पार्वती जी दोनों ही घबरा गए। श्रद्धा ने जैसे तैसे करके हिम्मत इकट्ठा की और पार्वती जी से कहा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है नानी, आंटी को हम हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। श्रद्धा ने अपनी घबराहट को काबू में करके जवाब दिया। ऐसी सिचुएशन में वो पैनिक नहीं हो सकती थी, ऊपर से चाहत भी वहां नहीं थी। लेकिन चाहत अब तब तक आई नहीं है, हम उसके बिना निशा को हॉस्पिटल कैसे लेकर जाएंगे, पार्वती जी ने घबरा कर कहा। नानी आप चिंता मत कीजिए, ये हॉस्पिटल मेरी जान पहचान का है, मैं चाहत को कॉल कर दूंगी तो वो वहां आ जाएगी, पहले हम आंटी को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे, श्रद्धा ने जैसे तैसे करके नानी को समझाया और फिर आस पड़ोस वालों की हेल्प से उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर गई। वहां आते ही निशा को अंडर ऑब्जर्वेशन में ले लिया गया, उसके हर एक टेस्ट किए जा रहे थे। चाहत के वहां ना होने पर पार्वती जी काफी घबरा गईं और अब उन्हें चाहत के लिए डर लगने लगा था, तो वहीं सबसे अनजान चाहत अपने कॉलेज में फिर से आकर काफी खुश थी।